Riva. Panduranga. Hari, Hari, Vasudeva.
Hari, Hari.
Hari, Hari.
Hari, Hari.
तो वहां भेजे गए, कौन सा स्थान? सरस्वती के तट पर प्रभास क्षेत्र भेजे गए। वो सभी द्वारका वासियों ने वहां जब वे गए हैं, कुछ धार्मिक कृत्य भी किए हैं, स्नान किया है, जैसे योजना बनी थी, द्वारकाधीश सभी को आदेश उपदेश किए थे, वहां जाने के उपरांत हम ऐसे धार्मिक कृत्य करेंगे, उसी से तर जाएंगे हम, वो भी हुआ। और धीरे धीरे और भी कोई दृश्य उपस्थित हुए, कुछ पेय वे पिए, ऐसे कोई ड्रिंक्स, अपेय जो पीने योग्य नहीं है, अभक्ष भक्षण किए और उसी के साथ उनमें आए और कई प्रकार के, जैसे भोजन करते हैं जो जैसे पीते हैं तो हर पेय के साथ उसका अपना गुण होता है। अगर चरणामृत पिएंगे, गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर हम गंगा का जल और फिर उसका उपयोग भी भगवान के अभिषेक के लिए करेंगे तो वो चरणामृत जब बनता है उसका पान करने से अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम पुनर्जन्म न विद्यते, ये सारे फल है उस चरणामृत पीने के। चरणामृत जो शुद्ध है, गुणातीत है, अलौकिक है, दिव्य है, उसके पान से हम में भी उसी प्रकार के भाव उदित होते हैं। फिर सात्विक आहार, सात्विक पेय पिएंगे तो सात्विक विचार के हम बनेंगे, लेकिन सात्विकता से भी ऊपर एक अवस्था है, स्थिति है, जो दिव्य स्थिति है, जो अलौकिक स्थिति है, जो सर्वोत्तम स्थिति है। सो यू आर व्हाट यू ईट, ऐसे भी कहावत, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे हम लोग बनते हैं, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं उससे केवल हमारा स्थूल शरीर ही नहीं बनता है, उसी के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के अंदर दूसरा एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर कहलाता है, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ है। ये मन बुद्धि अहंकार भी बनते हैं या प्रभावित होते हैं हमारे भोजन पान से, पेय से। तो तमगुनी रजगुनी पेय खाएंगे पिएंगे, जिसका भक्षण वैसे वर्जनीय है, कुछ भोजन तो निषिद्ध है, इन प्रचार तो हो रहा है, संडे हो या मंडे हर रोज खाते जाओ अंडे। हमने पढ़ा एक लॉरी के पीछे हमारी गाड़ी थी तो उस पर लिखा था शायद अंडा बेचने वाली गाड़ी होगी, उसमें पीछे लिखा हाँ संडे हो या मंडे खाते जाओ हे लोगों अंडे। फिर हमारे विचार में आया कि ये लोग नहीं जानते कि पड़ेंगे दंडे। यमराज के, लेकिन किसने देखा है वही चार्वाक का तत्व ज्ञान, कुतः पुनरागमनो भवेत, तो ऐसी बात। तो भगवान ने तो कहा है, कैसा भोजन करने के लिए कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति। हम लोग क्या करते हैं, मटनम चिकनम बिरयानीम, संस्कृत मंत्र है, अम अम करो तो हो गया, संस्कृतम हो गया। तो हुआ यदुवंशियों ने भी ऐसे कुछ उनका खान पान पेय हुआ, और फिर तमोगुण और रजगुण जागृत हुए, क्रोध उत्पन्न हुआ, कलह की भावना, और फिर शुरुआत भी हुई, आपस में खूब लड़े। और लड़ने के लिए स्मरण रखिए, वो जो हुआ मुसल का जो छोटे कण बना के पाउडर बना के समुद्र में फेंका, फिर वो समुद्र किनारे पर आए थे, उससे बना था एक एक पौधा बना था, कोई बांबू जैसा, एरक नाम का शायद ये कोई नई वनस्पति की योनि ही बनी, पहले थी नहीं, न भूतो न भविष्यति जैसी। तो कोई हथियार तो नहीं थे, तो द्वारकावासियों ने एक एक उसको उखाड़ के लिया और एक दूसरों की पिटाई करने लगे। उसका सारा बन ही बना हुआ था, और उन मुनियों का शाप था कि ये जो मुसल है, ये बालक मुसल को जन्म देगा, ये मुसल ही तुम्हारे कुल का नाश का कारण होगा। तेई हो रहा था, उस मुसल के लोहे के कणों से बने हुए ये कुछ पौधे बांबू जैसे सभी ने उठा लिए, और उसी की लाठी डंडी बना के एक दूसरों के हाथ पैर और सिर तोड़ने लगे। और कितने असंख्य द्वारकावासी थे, और कुरुक्षेत्र जैसा मैदान, दूसरा यहां मैदान प्रभास क्षेत्र का, वही युद्ध भूमि बना। और जो परिवार के सदस्य थे, मित्र थे, बंधु बांधव थे, बने एक दूसरों के शत्रु। और इसी के साथ पूरा नाश हुआ है, यदुवंश कुल का नाश हुआ। हरि बोल। तो अब भगवान बैठे हैं सरस्वती के तट पर, स्वयं भगवान बैठे हैं। वो दारुक को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम चलो, तुम द्वारका जाओ। गच्छ द्वारवतीं दूत ज्ञानिनां निधनं मिथः। आपस में लड़ लड़ के सारे यदुवंशी निधनम नहीं रहे, विनाश हुआ। ये समाचार, ये संदेश पहुंचा दो द्वारका में, हे दारुक, भगवान के सारथी, उनको ये सेवा दी जा रही है, संदेश वाहक बनेंगे वे। संकर्षणश्च निर्याणम् बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्। और ये कहना कि शंकरषण वो बलराम, उन्होंने प्रस्थान किया है और तुम्हारे द्वारका पहुंचते के समय तक मैं भी तो प्रस्थान ही करूंगा, तो कहो कृष्ण और बलराम दोनों ने भी प्रस्थान किया है। और उनको ये कहना, द्वारकायाम न च स्थेयम भवद्भिश्च बंधुभिः मया त्यक्ताम यदुपुरीम समुद्रः प्लाव इष्यति। उनको कहना कि तुरंत वो द्वारका को छोड़े, क्योंकि मेरे प्रस्थान के कुछ तुरंत बाद ही यदुपुरीम मतलब द्वारकापुरीम प्लावयिष्यति समुद्रः, समुद्र में वो डूबने वाली है वो द्वारका, वहां से दूर हटो, चले जाओ वहां से। स्वस्वम स्वम स्वम परिग्रहम सर्वे आदाय पितरो चनः अर्जुने नाविता सर्व इंद्र प्रस्थम गमिष्यथ। तो कहां जा सकते हैं? तो भगवान ने कहा अर्जुन, मेरी सारी जो 16108 रानियां हैं उनको लेके, मेरे माता पिता को लेके और बुजुर्गों को लेके वो इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। त्वं तु धर्म मस्थाय ज्ञान निष्ठ उपेक्षकः मन माया रचनामीताम विज्ञायूपशमं व्रज। और तुम देखो दारुक, तुम तो ज्ञानी भक्त भी हो, तो समझना कि जो भी हुआ ही मेरी रचना समझ के तुम शांत रहो, ज्ञान में निष्ठ रहो, विचलित नहीं होना इन सब घटनाओं से। दारुक ने ये सारे वचन सुने हैं और अब द्वारका के लिए प्रस्थान करना ही है। उसके पहले परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः, तो प्रभु की पुनः पुनः प्रदक्षिणा करते हुए अब ये अंतिम दर्शन और प्रदक्षिणा और नमस्कार होगा। तो किन भावों के साथ वो दर्शन वो परिक्रमा नमस्कार किया होगा? तत्पादो शीर्ष्णुपाधाय, अपने सिर को पूरे भगवान के चरणों में टेक के स्पर्श करा के दुखी होके प्रययो पुरीम, उदास मन से द्वारका के लिए प्रस्थान किया। सभी दुखी है, कुछ तो बेचारे मर ही गए, अब ऐसे उनकी गति भी ये नहीं समझना। तो द्वारका के जो वासी रहे, जो भगवान के बंधु बांधव, ये साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण जीव नहीं है, जन्म मरण का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वे भी अवतार लेते हैं जैसे भगवान का अवतार होता है। जिस प्रकार से उन्होंने एक दूसरों का संहार किया, वध किया, हत्या की, ये तो एक लीला मात्र, वो एक कारण ही बना है, नहीं तो वैसे वे सभी के सभी वे भी लौटे हैं भगवान के धाम, वे भगवान के शाश्वत पार्षद है, जहां से वे आए थे वही वे लौटे हैं भगवान की लीला में सहयोग देने हेतु। भगवान अकेले लीला, वैसे लीला के लिए तो अनेक भक्त चाहिए, व्यक्ति चाहिए, आदान प्रदान होगा तो लीला होगी, उसी से रस आनंद आएगा। तो प्रभु ने, प्रभु के कई सारे भक्त हैं, तो जो अभी अभी प्राण त्यागे एक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से, वे अमर है, वे शाश्वत पार्षद है भगवान के, तो वे भी भगवान के धाम ही लौटे हैं ऐसे समझना है। और ये समझ ही नहीं है, ये सत्य कथा है। अब हम ये अंतिम दृश्य है कहिए। ये अंतिम एक दो दृश्यों में से एक है। सरस्वती का किनारा है, भगवान बैठे हैं, धरोपस्थे निशसाद तुष्णिम आसाद्य पिप्पलम। एक पीपल के पेड़ को अपनी पीठ लगाए हुए, ये पीपल, पीपल का पेड़ इस संसार का प्रतिनिधित्व करता है। ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा, ऐसे भगवत गीता में इस संसार को एक वृक्ष कहा जो उल्टा है। सुल्टा वृक्ष तो भगवान के धाम में है, उसकी परछाया है ये संसार, एक वृक्ष है पीपल का। तो भगवान की पीठ, पीपल के पेड़ की ओर है, मतलब अब भगवान इस संसार से दूर जाएंगे, उनकी पीठ संसार की ओर है और धाम की ओर प्रस्थान, ये संकेत हो रहा है। भगवान जब पीपल के पेड़ को पीठ लगा के बैठे हैं, और बैठे हैं सीधे जमीन पर ही बैठे हैं, ऐसे शायद ही कभी बैठे होंगे, सीधे जमीन पर धूल में ही बैठे हैं। पृथ्वी भी भगवान की एक भारिया, भूदेवी, श्रीदेवी वैकुंठ में तो भूदेवी संसार में, ऐसी भगवान की दो रानियां, शक्तियां मानी गई है। तो इस भूदेवी के रक्षा के लिए तो प्रभु आए थे, तब प्रस्थान के समय पुनः उसको पूरा संग दे रहे हैं, उसके सट के उसे बैठे हुए हैं। इस वर्णन में यह भी कहा है कि भगवान ने अपना बाया पैर दहने जांग पर रखा है, बिभ्र चतुर्भुजम रूपम भ्राजिष्णु प्रभया स्वया। भगवान चतुर्भुज रूप में विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, और अपना स्वयं का ही तेज से स्वयं प्रकाशित है। दिशो वी तिमिरः कुर्वन्, तिमिर तिमिरंधस्य, वहां अंधेरा दिन का समय है तो भी अधिक प्रकाश वहां, क्योंकि भगवान का शरीर कोटि सूर्य सम प्रभा। जैसे हम अगर लोड शेडिंग या और भी कोई कारण से अगर घर की बत्ती बुझ जाती है, ट्यूबलाइट फ्लड लाइट नहीं है, तो हम लोग फिर मोमबत्ती जलाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद पुनः जब विद्युत लाइट का प्रकाश हो जाता है तब मेणबत्ती मानो नहीं के बराबर। तो वैसी स्थिति होती है भगवान के सानिध्य में, जहां भगवान है जब कोटि कोटि सूर्य जैसा प्रकाश, तो कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, तो जो आकाश का जो सूर्य है वो मानो मोमबत्ती बन जाता है, और भगवान एक प्रखर ज्योति प्रकाश। बिभ्रद या का बिभ्रद प्रभया, अपनी प्रभा से सारी दिशाएं तेजस्वी, विधुम इव पावकः। और माने अग्नि है और यह सुनहरा तेज उस अग्नि से निकल रहा है, ऐसा तेज निकल रहा है जहां भगवान बैठे हैं। श्री वत्सांक घन श्यामम, और श्री वत्स भगवान के वक्षस्थल पर कुछ सुनहरे बालों की एक रेखा है, उसको वत्स वत्सांक कहते हैं, श्री वत्स। ये लक्ष्मी का स्थान बताया जाता है, लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती है ये श्री वत्स के रूप में। घनश्यामम, और भगवान घनश्याम है, घन घनश्याम, घन इव श्याम, जैसे मानसून सीजन में जो बादल आते हैं जिसमें अधिक जल की मात्रा होती है, जिसके कारण अधिक काले होते हैं, तो वो बादलों का जो रंग है, आभा है, वही भगवान के रंग अंग की। गोपियां जब देखती है बादल तो उनको तुरंत किनका स्मरण होता होगा, घनश्याम श्री कृष्ण का। ऐसी भावना है, हर कोई बात उनको भगवान का याद दिलाती है। कौशेय अंबर युग्मेन परिभीतम सुमंगलम, भगवान वस्त्र पहने हुए हैं, रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, पीतांबर की धोती पहने हैं, दुपट्टा भी पहने हुए हैं, बड़ा ही मंगलमय रूप है भगवान का। सुंदर स्मित वक्त्राब्जम, ये ध्यान अवस्था में ये सब स्मरण करने की बात है, ये ध्यान ही है, ये लीला का स्मरण है, लीला का ध्यान है। हम लोग योगी, भक्ति योगी बनेंगे जब स्मरण करेंगे भगवान की सौंदर्य का, फिर इस भगवान की ये छवि हमारे मन में बसेगी, वो सुंदर छवि मन में बसे, और फिर मदद होगी। कब मदद होगी? जब अंतिम समय आ जाएगा। इतना तो करना स्वामी, जब क्या होगा, प्राण तन से निकले, तब वो सुंदर ध्यान अगर समक्ष आ जाएगा, अगर हमने अभ्यास किया हुआ है। गोविंद नाम लेके, गोविंद का नाम लेना चाहेंगे हम उस स्थिति में, प्रभु आप आ जाना, दर्शन देना, राधा को साथ ले आना, ऐसा भी निवेदन है। वो जमुना का तट हो और क्या हो, बंसी वट हो, ऐसी सारी परिस्थिति हो, ऐसे स्थिति में अगर हम इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रातः काल में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग उस क्षण की भी तैयारी करते हैं जब ऐसे सत्संगों में आते हैं, अपनी साधना भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ये सब के पीछे का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य ये भी है, ताकि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से जब निकलने लगेंगे तो मदद होगी। सारे हमारे जो भागवत कथा श्रवण, जो हमने किया और क्या किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कीर्तन किया, ये जो प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया, चरणामृत जो हमने पिया, तो प्रभु याद आएंगे। ये कहते कहते कोई और भी बात हमें याद आई, हरिद्वार की बात, हमारे कुछ भक्त प्रचार के लिए गए थे, कुछ वर्ष पूर्व की बात है, तो गंगा के तट पर ही जहां हर की पावड़ी है, हर की पावड़ी नाम का स्थान, वहां कोई फ्री कोका कोला डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, फ्री कोका कोला डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे भक्तों ने सोचा ये क्या, कई ट्रक के ट्रक खड़े थे और जो भी आता है फ्री कोका कोला ले जाओ, खुश हो जाओ बेटा। तो भक्तों ने पूछताछ की, ये हो क्या रहा है, या तो गंगा जल बटना चाहिए। तो पता चला कि किसी पिताश्री का देहांत हुआ, तो पुत्र नहीं, वैसे हमारे भक्त को कहा तो उन्होंने कहा कि जब पिता के कुछ अंतिम क्षण ही शेष थे तो उन्होंने कोका कोला का स्मरण किया। तो हम सारे पुत्र तो एकत्रित थे और हम जानते थे कि वे वैसे शिव जी के भोला के भक्त थे, तो हम उनको पुनः पुनः याद दे रहे थे, पिताश्री भोला कहिए भोला। लेकिन पिताजी ने क्या कहा, बेटा कोका कोला। और भी कुछ सांस बाकी थे ही, तो पुत्रों ने कहा, फादर कुछ लास्ट चांस है, देखिए भोला कहिए ना भोला कहिए। बेटा कोका कोला, कहते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। और तो सारे पुत्रों ने सोचा कि हमारे पिता ने जिसका स्मरण किया, द लास्ट विल जो उनकी रही कोका कोला, तो चलो उनके स्मृति में क्या करते, कोका कोला ही बांटते हैं, तो फ्री कोका कोला। गर्मी के दिन थे तो सब प्रसन्न भी थे, पी रहे थे, जी भर के पी रहे थे। तो ऐसी समस्याएं हैं, न जाने यहां के हमने क्या खाया पिया, देखा सूंघा या जो भी पढ़ा, उसका प्रभाव अगर खोपड़ी में अटक जाता है, अटक जाता ही है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, भगवान का नियम ही है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जो भी ध्यान करेगा विषयों का ध्यान करेगा, संगस्तेषु उपजायते, संग अटैचमेंट उससे वो आसक्त होगा। अब देखिए हम भक्तों का प्रस्ताव भी तो वही है, साधु भी जनता को, भक्तों को, वक्ताओं श्रोताओं को भगवान से आसक्त करना चाहते, भगवान में उनकी आसक्ति बढ़े बस, तो भगवान विषय बना देते हैं, भगवान, तो भगवान इस विषय का जब ध्यान होगा, ध्यायतो विषयान पुंसाम, मनुष्य अगर ध्यान करेगा तो जिस विषय का उसने ध्यान किया उसमें वो आसक्त होगा, ये नियम है। तो ये नियम दोनों पार्टी को भी लागू होगा। अब अंतर इसमें है, इस बात में है कि आपने ध्यान किसका किया, अपने मायवी वस्तु का या रूप का ध्यान किया तो आप उसमें आसक्त होंगे, किंतु अगर आपने भगवान के रूप का ध्यान किया तो आप भगवान के रूप में आसक्त होंगे। तो भागवत है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, ये विषय है। इनके पुनः पुनः श्रवण करने से फिर पुनः जब धाम जाते हैं, भगवान के द्वार जाके भगवान के रूप का दर्शन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, और ये प्रभु का नाम स्मरण कितना बड़ा रिमाइंडर या कितना बड़ा ये विषय है भगवान के संबंध का, तो इसके ध्यान इनके ध्यान से भगवान में हम लोग आसक्त होंगे। तो यहां ये कुछ अंतिम दर्शन और सुंदर छवि का दर्शन यहां सरस्वती के तट पर भगवान दे रहे हैं, और भगवान वहां थे तो इतना सारा विस्तृत वर्णन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वर्णन होगा तो फिर हमारे ध्यान का विषय बनेगा। नीलकुंतल मंडितम वक्त्राब्जम, भगवान का मुखमंडल प्रफुल्लित है भगवान, कमल का फूल वो भी कैसा खिला हुआ फूल, ये भगवान का मुखमंडल। उसी पर फिर और दो आंखें हैं, वो भी छोटे छोटे कमल के मानो फूल खिले हुए हैं, और नील कुंतल उनके बाल घुंघराले बाल अलकाओं पर शोभायमान है। पुंडरिक अभिरामाक्षम, पुंडरिकाक्षम कहा ही चरण पद्मलोचनी भगवान। स्फुरन कर कुंडलम, विठल का भी दर्शन भी यह हमारे भक्तों ने रखा है, व्यवस्था की है हमारे दर्शन के लिए। तो मकर कुंडल सुरन मकर कुंडल, जैसे हम तुकाराम महाराज ने वर्णन किया है उस अभंग में, वैसे यहां भी अभंग है, यहां भी दर्शन है। कौस्तुभेन, कौस्तुभ भी है, कंठी कौस्तुभ मणि तुकाराम महाराज ने कहा, सुखदेव गोस्वामी अलग क्या कह सकते, जैसे भी है सभी कहते पीतांबर वस्त्र है, पीतांबर वस्त्र ही तो पहनते हैं भगवान। जो भी साधु संत करे वर्णन भगवान श्री कृष्ण का और क्या कह सकते, काला नीला ऐसा रंग का वस्त्र पहन भगवान अधिकतर आज कैसा है, पीतांबर है क्या है थोड़ा, यस पीतांबर। वनमाला परितांग, और भगवान ने माला पहनी हुई है गले में वनमाला, और बैठे हैं आपको बताया बाया पैर दाहिने जांग पर रखा है और भगवान बैठे हैं, और अब आएंगे एक व्यक्ति अब आएगा स्थिति में, वैसे वन है नदी बह रही है तो वहां वन है, एक शिकारी आएगा धनुष बाण लेके आएगा, और इस शिकारी का नाम है जरा, इसका नाम आप कुछ समय पहले सुने हो, मुसल का जो एक टुकड़ा और तो चूरा या कन फेंके गए, एक टुकड़ा भी फेंका गया था जिसको मछली ने खाया, मछली को पकड़ा गया, मछली के पेट में वो मिला, उस मुसल के टुकड़े को इस जरा नाम के शिकारी ने अपने बाण पर लगाया था।